अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञान राधे त्वं नयमाम चरणं अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जाड्डं जाबुदरोचसं विदधतं पट्टम्बरसस्यं बिन्दारण्य निवासिनं हृदि ददस्दामाभिरामोदरम् राधा स्पन्दनिवेशितो गलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। आज के हमारे पंचम दिवस प्रथम वन मधुबन ताल वन पासी कुमुद वन তারপরে চন্দ্র মানসরোবর অথবা রাধারানী তারপরে মাঠ বন হতে ভদ্রবন ভান্ডির বন ভান্ডির বনের মধ্যে ভান্ডির বট বেণুকো দাউজি দর্শন আর তারপরে বংশী বট ওইখানে শ্রীদাম ভৈয়া স্থান ছায়ি অগিয়ারা গ্রাম ইত্যাদি আর তারপরে মার্গবন হয়ে যাত্রা ফিরেছে। ওখানকার কথা যদ্যপি হয়েছে তথাপি আমাদের কি নাম
হোয়াট নেম জয়ন্ত কৃষ্ণ
ও জয়ন্ত কৃষ্ণ প্রভু উইল স্পিক ভেরি শর্টলি অ্যাবাউট ফার্স্ট মধুবন What is the importance of Madhubar?
Also, Shyamarani Didi also, she did not speak anywhere.
The wonder she had told.
Omagyan. Omagyan, Dinam, Iskodhyam, Jalashyam, Shachumetam, Nathasmaya, Shukriya, Jalashyam. So, the first forest we visited today was Madhuban. We have extensively heard from the scripts of our seniors about the glories of this place.
But I want to
repeat something. So, Madhuban is one of the 12 grand forests. And according to Shastras, it has been worshipped. Now, since time immemorial, in all yugas, great sadhus, great characters went and performed austerities there for the attainment of different boons. First, we have been Satyayuga, Dhruva Maharaj, he performed austerities there. And on Dhrupatina that we visited, and we heard the Katas extensively there, I don't know if I should repeat. And, in Chaitanya Mahārāj Maharaj, he also came to worship there. He had this famous encounter with Mabasa Muni. Then in Baba Yuga, Krishna himself, Madhu means honey. So there Krishna would engage in different pastimes like Madhupan, drinking honey from the bees. Also the Anila of the Sakas in Sakyaras. And the only love of the Sakis and Madhuryanas.
Also, Srimati Radhika, she used to go there and pick up flowers to make garland for Krishna. And she would ask the trees, can you come? And they would shed so many flowers. Can you cry? And they would shed tears of honey. So madhu is the most prominent thing there, the honey love of the bridge passage for Krishna. We know also that when Lord Balaram, he came back to pacify, when he came back to pacify the bridge passage of Krishna, Braja Ramani, the Braja Gopis, who were dying in separation from Krishna, he went there. But when he saw the state of separation that they were experiencing, he also became a little desperate. And remembering Krishna and his pastimes, he became so absorbed and he turned black. So we saw that deity of Doji there, in the black complexion instead of his camouflage, moonlight complexion. Also in Kali Yuga, Nityananda went there, and before Mahaprabhu came to Vrindavan. And when he went there, he also felt great separation, and he remembered all his lila as Lord Balaram. And then in his heart, a deep surge of love for his brother, Kaniya, came, and he started to lament, oh, Kaniya, Kaniya, where are you, where are you? Then the voice came and said, oh, your Kaniya is not there. But he had vented himself in Navadvip as Gauranga. Immediately he ran and traveled all the way to Navadvip, and he hid himself, we know, in the house of Nandanacharya. And then Mahaprabhu said, oh, a great personality has come. I know, you go and look for him. And then they couldn't find him. Then he himself went there and he found his beautiful planet, the Vatican. So this place is a place where the honey of the love of the devotees is flowing to the Supreme Lord. And we were boundlessly fortunate to go there and touch the dust of this sacred place on our head.
Okay. Thank you.
Go.
मधुबन में कृष्ण बलदेव सवेरे उठ करके गैया को चराने के लिए जाते और वहां वनों में फल फूल लताएं फल से वृक्ष फलों से लदे हुए रहते थे, मधुमक्खियों का छत्ता रहता था और वहां पर बलदेव जी को मधु बहुत प्रिय है, इसलिए वो मधु का पान करते थे। और दूसरे मधु का पान माने क्या, वो द्वारका से लौट करके आए थे, कृष्ण मधु श्याम मधु वो पान करते थे। जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में सब समय उनकी चिंता करती थी, बलदेव प्रभु द्वारका से तो आए किंतु चिंता करते करते यहां पर श्याम बन गए और श्याम रस मधु जैसे गोपियां कृष्ण का चिंतन करते 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 उनका भाव पान करती थी, ऐसे ये भी करते थे। दूसरी बात, एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, तुम क्या तुम मक
मैया मरी मैं नहीं मां, तुम मक्खन चोरी करता है।
उन्होंने कहा, अरे श्याम तुमने मक्खन चुराया ना, तुमने मक्खन चुराया है। नहीं मैंने तो नहीं चुराया, तो जरूर चुराया चोर कहीं का। कृष्णा जी मैया सवेरे होते ही गायों के साथ में लाखों लाखों गायों के साथ में मधुबन भेज देती है और वहां पर गाय चराते चराते थक जाता हूं और शाम को लौटता हूं। मैंने कब माखन चुराया? ओ मैया, मालूम होता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। यदि पुत्र होता तो ऐसे झूठ मूठ का चोरी का इल्जाम नहीं लगाती।
सुनते ही जसोदा माँ का हृदय द्रवित हो गया, रोने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने मक्खन नहीं चुराया। तो इतने में कृष्ण बोल उठे, भैया पहले तो कह रहे थे भैया मैं नहीं माखन खाऊं, खायो मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन कब खाया, सवेरे तो भेज दिया गोचार के लिए और घूमते घूमते शाम को लौटा, कब खाया। किंतु जब यशोदा मैया रोने लगी तो कृष्ण कहने लगे, भैया मैंने ही माखन खाया, मैंने ही, पहले था कि मैं नहीं खायो, अब हो गया मैंने ही माखन खाए। यशोदा जी ने गोदी में भरकर उनको फिर लाड़ प्यार करी और कृष्ण भूल गए। इस तरह से यहाँ पर ये सब लीलाएं हुई।
Hare Krishna. So, Srila Gurudev told in Madhuban, Krishna is to go for cow grazing and Baladev Prabhu is to horn of honey. So, he is to bring honey over there. So, Madhuban Gurudev told, when Baladev Prabhu and Krishna, after completing Brajlila, went to Dwarka, Baladev Prabhu returned Braj again and specified to gopis, and just like our Param Gurudev composed one Vrindavan Vinodhya Tattvastakam, Srila Paramdev composed Radha Tattva Krishna, Radha Jinta Nilesha Jaswakanti Vilopita, Sri Krishna Taranam Mande Radha Jinta Vigraham. In the same way, every year you can see that Baladev Prabhu is golden complexion, but only exceptional case in Madhuban, black complexion. Why? Because Krishna Chinta Nivesena Yashtakanti Vilopita Baladeva Prahumbande Samabarana Vigraham. Krishna Chinta karte karte wo apne sab kuch kho baithe aur Krishna Varna unke complexion Krishna Varna ho gaya.
Angrezi bol chana, Hindi bol chana.
So, when Baladeva Prabhu returned from Dwarka and wanted to specify gopis, just like Paramdev composed Vrindavan Dev Tattvastakam, Radha Chinta Nivesena Yashtakanti Vilopita, Sri Krishna Charanam Mande Radha Vinoda Vigraham, all over the world, you can see that Krishna is new, fresh, with cloud complexion. But our Paramdev showed the whole world that Krishna has like Anika's complexion. What Paramdev has seen is in our Bharati, donated to us for the whole world. In the same way, when Paramdev returned from Dwarka and he came to Madhuban and wanted to specify gopis, what happened about him? Everywhere in the world, you can see Paramdev is golden complexion, but exceptional case is here, he became blackish complexion. Why? So, Krishna Chinta Nivesena, Yashtakanti Vilopita, Baladev Prabhu Mande Samavarna Vigraham. Thinking about Krishna again and again, he further completely and absorbed in Krishna's mood and he became blackish complexion. So that vidra is over there in Madhuban. After the Gurudev told, once Jasramana is telling to Krishna, oh Krishna, all gopis are telling you are butter thief, you are stealing butter. Today you must have stolen butter and eat it. He said, no, Maya, I have not eaten any butter. So, according to Indian language, Indian national language, Maya, main nahi makhan khayo. Maya, I never eat butter. He said, no, you must have eaten. And he said, how is it possible that I will eat butter? When early in the morning, you sent me for cow grazing, when evening I came back, why the time you steal butter? He said, oh, Maya, I think I am not your own son. I think somebody gave me birth and you are blessing me. Hearing this, Mother Dasarath could not tolerate it. He began to eat. No, he never did wonder. Mr. Kaur, seeing Dasarath's mind weeping, he said, Maya, maine hi makhan khayo. Means Maya, surely I have eaten wonder. So, some quiet has told, seeing this, hearing this, Maya Mwari, Terika Sam, maine hi makhan khayo. Maya, I am taking all of you, I never ate butter. Foran bhaiyo kovan ke paase, madhuvan mohi pathayo. As soon as early in the morning, you send me behind the cow for grazing. So when it's time to eat butter, kovan ke paase, dinbhar bhakto, saan bhaiyo bharayo, Maya Mwari, Terika Sam, maine hi makhan khayo. And Krishna is telling, Maya may samjha, may parayo jayo. Oh, somebody has given birth, so you are teasing me. If I give whole son, is it possible to tell me like this? Then, hearing this, Mother Jesus could not tolerate. How Krishna can tell me that he is not my whole son, somebody gave your name and I am noticing him? Then, Jesus began to say, no, he has not eaten butter and take it in her lap. Hearing Mother weeping, Krishna told, Maya, maine hi makhan khayo. Maine means, butter has eaten by me, surely. That would have told this thing just now. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Can you tell about short? Talban?
Which one?
Talban.
Talban.
Very short.
So Guru has instructed me to speak about Talavan. This is, Talavan is a kind of palm tree that produces a great sweet and beautiful succulent fruit. And there was a special grove of these fruits that was that belonged to Kamsa. King in return. And it was protected by a very powerful and feared demon, Devakasura. And one day the cowherd boys were out playing with Krishna, grazing the cows, as was their practice, and they began to feel the demon of hunger. And they asked Krishna, oh please satisfy this demon of hunger. We can smell these very fragrant, beautiful, tall fruits. Can we go there and have these fruits? Krishna Balaram said, well, yes, of course, but they said, but you know, the cowherd boy said, there's a very powerful demon there, Devakasura, in the form of a donkey and ass, and his friends are there with him, and they're all very powerful, and sometimes they even eat people, whole, alive, so it's a very dangerous place. And they were saying this to excite Krishna and Balaram, and excite them in their pure rats. And so Krishna and Balaram were thinking, oh, how powerful can this demon be? Let's go. And they were very excited. So they came to this Talavan place, and Balaram walked up to one tree, and with his mighty arms began to shake it. And many, many fruits began to fall down, and they made a pop, 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 pop sound as they hit the ground. Hearing this, this powerful Devakasura became enraged. He ran to the place immediately. And seeing Balaram shaking the tree and taking the fruits, he ran up to him. And if you've ever seen a donkey out being kicked, he comes running up and whirls around. And he kicks Balaram right in the chest. But Balaram is unfazed. So the donkey becomes enraged and he runs around. And he comes again. And he tries to kick him in the chest, and Baladev grabs his hind legs, whirls him around, and then throws him into a tree. And by the whirling force, Devakasura was the wind was warm. Because all the friends of Devakasura were also very powerful, became enraged, and they attacked both Krishna and Balaram, who easily dispatched the boat, swinging them into the trees, and very shortly the trees were filled with dead, bloody doggies, and stool, and the whole place was a mess. So the cowherd boy said, well, we don't want these fruits now, and they left.
What?
Pravita, are such foolish creatures. The donkey simply endures the kicks of the she-donkey. It endures the beatings of its master. He carries huge loads on his back. In the summertime, he becomes very fat. Even though there's no grass on the ground anywhere, the donkey's thinking, there's no grass on the ground because I've eaten it all. And so he becomes very fat. Foolish thing. And in the winter, when there's so much grass and everything's so opulent, he becomes very thin because he's thinking, this grass is everywhere. That means I haven't eaten anything. So the donkey is foolish. He represents one of the enactments of ignorance. And Baladev, as a kantapur tattva, removes that.
What is the history of Mansarovar? Bolichir. You told them?
Already.
Oh, then who? You. Bola? Dandi Maharaj, he has just spoken.
He spoke at Madhuban.
You? Srinath. In brief.
So we went to a very important place today, Shri Mansarovar. So in Sharadiya Ras, Srimati Radhika, she saw that Krishna was dancing with all the gopis. Lakshmi Madhya Gadirana Madhaya, Vastavan Nathana, Vastuli Surabhi Vilasamurti, Vinnasta Vakuradhana, Vida Kadro, Vandare Kavito, Shri Krishna became the pivot of the Ras Leela, and he was in the center with Radhika, and Radhika was surrounded by Radha Krishna was surrounded by many gopis, and Krishna had taken as many forms as there are the gopis. Seeing this, Radhika thought that Krishna is dealing equally with all the gopis, so therefore she left the Ras Leela and crossed the Jamuna River and went to Mansarovar. And there she began to weep in separation from Krishna. And there, from her ears, the Mansarovar manifests. So Mans is a very high state of prema. So therefore then Krishna came there following her and he fell down at her feet and tried to pacify her. Sri Jaya Goswami says that Smaradharva Pandaram, Mama Shirasi Mandalam, Devi Pada Pallava Udaram, Shunati Mani Dharam, Madana Katanadaram, Harku Dutu Pahita Vikaram. That, O Radhike, this, because of your mind, that there is poison all over my body. And in order to remove this poison, please place your rectangular lotus feet on top of my head. Then Krishna also offered his flute at the feet of Srimati Radhika. He also offered his crown at the feet of Srimati Radhika. And he told her, I surrender at your feet, but please give up this man. So actually, in order to rectify the man of Srimati Radhika, sometimes Krishna, he plays the flute actually. So it has been explained in Pratyabha that Mano Madhura Madhavi Lata Mandate Paturata Madhura Sanjago Gopika Mana Meena Padisha Madhura. The man of the gopi is like a fish, and Sri Krishna's flute is like an angle. In order to catch this fish, Sri Krishna uses his flute as an angle, as an expert angle. So, gopis, they cannot hold their maan in front of Krishna's flute song. There is a maana parikrahi kitagani yashtamshika anandamanam, gopi namcha vivechanam nidhavana rangya raho margaram, sadhisat chalitam vilasa viratu patyur grahan yashanam, tattat gauram rakshanam mudripo vamshiravam yashanam. So, Krishna very expertly broke the maan of Srimati Radhika, and then their lila-vilas again resumed. So this is the place which shows that Shri Krishna, he is Paratattva, Nityam Parastha Purusha Shikhanda Maule. that Sri Krishna is Paratattva, that Sri Krishna is also trying to call at the feet of Srimati Radhika. And even Jayadeva Goswami, being Krishna Paksha Gopi, hesitated to write this. However, our acharyas, who are upon the Vaishnavas, they are aware of Srimati Radhika. They are very happy to see that Sri Krishna is going to any extent to break the man of Srimati Radhika. So Srila Gurudev, he goes there and he actually in the past has said that there are bees there and they are all Tanmay in Radhika's bhav. And being Tanmay and absorbed in the mood of Radhika, all the bees are lying on the ground as if they are in the man. So this man is actually excellent characteristic of Paratyadas. And Srila Gurudev also last year explained that we are, other sampradayas cannot even imagine this mark and other things. Because other sampradayas, there is only Sakhi Bhava. But our acharyas, they do pranam, das chaitanam rasosu rasosu sakhya. Sakhyayitanam namosu namosu. We do pranam to sakhya from distance. And our mood is always that we always want to be the dasi of Radhika. Shama Sundar, Shikhanda Shekhar, Smera Hasan Purani Mahamudra, Radhika Rasika Manukutma, Vishwapriya Chalak Indra Guru. We always want to be the head servant of Srimati Radhika, so therefore this Manasarovar is very excellent place to understand Gaudiya Vaishnavism and the excellence of Srimati Radhika.
Thank you.
भांडीर भट्ट के संबंध में बेटी सविता कुछ बोलेगी। भांडीर भट्ट, उठो खड़ी हो जाओ।
गौड़िया वैष्णव भारतीय भाव के उपासक है। वहां पर श्री विश्वानंद जी की और ठाकुर जी की लीला बहुत ही छोटी उम्र में हुई। ये जो विवाह लीला है ये एक खेल है राधा कृष्ण का, खेलते हैं सखियों के मन में आती है। ये सखियां तो प्रेम की कारीगर है, ये लोग खिलौना है राधा और श्याम सुंदर, इनको जैसे चाहती है वे लोग खिलाती रहती है, रास्ता पार करती और कराती है। ये बट पक्ष इतना गंभीर और इतना बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं थी कि यमुना जी के उस पार तक उसकी शाखाएं चली जाती थी। इसी बट वृक्ष के नीचे एक बार श्री नंद बाबा श्याम सुंदर को गोदी में लिए हुए थे, श्री राधा जी भी वहीं प्रकट, राधा जी भी थी अपनी सखियों के साथ में, सखियों के मन में हुई विवाह करने की। उसी समय ब्रह्मा जी वहां से हंस वाहन पर चढ़कर पुष्कर जा रहे थे, उनको आह्वान करके दोनों का विवाह संपन्न किया। यह पहली लीला वहां हुई। दूसरी लीला थी वहां एक बार विश्वानंद जी श्याम सुंदर के साथ मिलकर खास परिहास कर रही थी। उसी समय चंद्रावली की सखी पद्मा वहां आती है और श्री विश्वानंद जी को प्यारे के साथ बैठ लेकर एकदम अंदर से उसको सहन नहीं होती है ये बात, क्योंकि पद्मा विपक्षा होती है। वह तुरंत जावट में जाकर जटिला और कुटिला से कहती है, हे जटिले देखो तुम्हारी पुत्र बनो श्याम सुंदर के साथ में उस नंद के लड़के के छोरा के साथ में वार्तालाप कर रही है, खेल रही है। इसको सुनते ही जटिला कुटिला और मुखराजी को लेकर वे भांडी पट में आती है। उसी समय श्री विश्वानंद जी का पालतू सुलक्ष सोदा आकर सूचना देता है कि जटिला इसी ओर आपको अन्वेषण करने के लिए आ रही है। श्री श्याम सुंदर ने देखा श्री जी को एक कुंज में छुप जाती है और उनकी जगह पर सुवर्ण सखा को राधा जी का शिकार करके बैठा देती है। श्री राधा जी छुप जाने के बाद में जटिला को मिला वहाँ उपस्थित होती है। सुवर्ण सखा बहुत सुंदर है, राधा जी का यदि उन पर वेश पहना दिया जाए तो बहुत कुछ राधा जी जैसे लगते हैं, इसलिए सुवर्ण सखा को वहाँ बैठाया। जटिला कुटिला देख रही एकदम तना कर कुछ कहने लगी। उसी समय सखाओं ने पीछे से सुवर्ण सखा की घोड़ी को उखाड़ दिया। देखा तो सुवर्ण सखा है, ये आदि सब ये सब लीलाएं भांडे बट पर हुई। एक बार भांडे बट पर श्याम सुंदर और बलदेव प्रभु दोनों खेल रहे थे। उसकी खेल था एक बट एक पार्टी के नायक कृष्ण थे, दूसरी के श्याम सुंदर बलदेव प्रभु थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ चर प्रलंबासुर जो सखा का रूप बनाकर आया वह कृष्ण की पार्टी में मिल गया और खेल प्रारंभ हुआ। खेल में रखा गया यह प्रतिज्ञा रखी जो हारेगा वो लोग हारने वाले को कंधे पर बैठाएंगे जीतने वालों को। कृष्ण की पार्टी हार गई और वे लोग तो घोड़ा बने और बलदेव प्रभु के सारे सखा कृष्ण की पार्टी के ऊपर चढ़ गए। सुबह हमारे श्री राम भैया ने सबसे पहले कृष्ण को घोड़ा बनाया और अपने उनके ऊपर चढ़ गए। इधर बलदेव प्रभु को प्रलंबा सुनने ले लिया। जब जो गंतव्य स्थान था वहां तक तो वो ठीक चला, गंतव्य स्थल से जब बलदेव प्रभु को नहीं छोड़ा उसने आकाश की ओर उड़ने लगा। उसी समय क्यों उड़ने लगा, क्योंकि बलदेव प्रभु उसको प्रलंबा सुन को मालूम था कि मुझसे पहले जितने भी असुर यहाँ खेले हैं कोई जीवित तो क्या खबर भी नहीं पहुंचा सके कंस को कि हम क्या किए यहाँ पर। इसलिए उसको सोचा ये बड़े प्रतापी हैं, मुझे मार डालेंगे, इसे लेकर अपने कंधे पर मथुरा चला जाऊं, कंस इसको आसानी से मार देगा और मैं अपना पुरस्कार प्राप्त कर लूंगा। क्यों अगर बलदेव प्रभु ये बलदेव मर जाएगा तो श्याम सुंदर अपने आप ही लीला उनकी समाप्त हो जाएगी। ऐसा विचार करके में मपाएगी और मैया के खून से मेरा रक्षक मंत्र ब्राह्मण से करवाएगी और मैया डर जाएगी। क्या कारण सर? आंख बंद करा दे। सखन ने आंख चौक बंद कर दे क्योंकि सखा जानती कन्हैया में कभी कभी नारायण को आवेश आ जाए और मंत्र को प्रभाव कहीं कम न रह जाए। क्या लिए सबने आंख बंद कर ली? आंख बंद करते ही कृष्ण ने आग पीकर उन सब गायों की रक्षा की। ये तो उनकी कथा थी। गुरुदेव इसमें शिक्षा देते हैं हम लोग भी अपनी इंद्रियों के बस में होकर इस विषयों की खास को खाने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या जलस द्वेष प्रतिष्ठा न जाने कितने कितने चक्करों में पड़े रहते हैं। जबकि साफ में जलते हैं और था गोविंद करके आवाज लगाते हैं गोविंद रक्षा करो रक्षा करो। जब देखते हैं हमारा कोई सहारा नहीं इस जगत में असहाय होकर के हम गोविंद को स्मरण करते हैं। जब तक कोई हमको जगत का कोई भी सहारा दिखता है तब तक निष्कपट रूप में श्री श्याम सुंदर को याद नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण द्रौपदी का महाराज जी कथा सुनाते हैं कि द्रौपदी की जब लज्जा लूट रहा था दुशासन तो आवाज लगा दी थी हे गोविंद राघव शरण अब तो जीवन हारी। परंतु ऊपर से जब बिल्कुल एक दांत की उसकी भी दांत से भी जब धोती खींच ली तब श्याम सुंदर साड़ी बंद कर ली उनके श्री अंग की रक्षा की। जब द्रौपदी जी अपने महल में श्याम सुंदर के संग पधारे तो द्रौपदी ने पूछा सखा श्याम सुंदर बताओ मैं इतने देर से तुमको स्मरण कर रही थी प्यारे गोविंद आओ रक्षा करो अगर एक सेकंड की देर हो जाती तो क्या होता। श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे बोले आप हंस रहे हो मेरी जान पर बीती थी आप हंसने का कारण बताओ। तब उन्होंने कहा देखो द्रौपदी तुम स्मरण कर रही थी और स्मरण करते समय उस समय
Why like this?
स्मरण कर रही थी उसी समय स्मरण करते हैं बट तो वो भी नहीं कर रही थी हृदय से देखा मेरे पांचों पति मेरी रक्षा करेंगे। पतियों का शीश नीचे था अर्थात हे द्रौपदी अब इस समय तुम्हारी रक्षा हम नहीं कर सकते हैं। अपने पिता ने कृपा देखा अपने कृपा द्रोणाचार्य सबकी तरफ से जब तुमने तुमको
बाकी है सुनो जल्दी खत्म करो।
उसी समय बस कहने का तात्पर्य है जब तक हम लोग आज संपूर्ण रूप से श्री श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं तब तक वे हमारी सहायता नहीं करते हैं। इसी मुंजावटी के कारण ही मुंजावटी में जो गाय चारों तरफ से देखा कि अब हमारी कोई रक्षा करने वाले नहीं है तब श्याम सुंदर ने रक्षा की। उसी प्रकार हम लोग भी सब का सहारा छोड़कर एकमात्र गुरु वैष्णव के चरणों में आश्रय लेकर उनकी नौका रूपी चरणों को संभाल कर जब हम लोग चले तो इस संसार सागर से तो क्या सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति ब्रज प्रेम भी हमको सुलभ प्राप्त हो सकता है। यही खाने बट में महाराज जी मुंजावटी के अंतर्गत यही लीला सुनाते हैं। बहुत बहुत मिला है समय नहीं क्योंकि महाराज जी ने मुझे पहले नहीं बताया वो आया गुरु के चरणों में बैठ के सुना था उसी में से एक दो शब्द कहे बस यही बाणी विराम है।
भट में बहुत सी कथाएं हैं। कृष्ण का वहां पर गांधर्व विवाह हुआ बतलाया। कृष्ण को चारण के लिए जाते थे कृष्ण और सखाओं के साथ गायों के लेकर वहां पर तरह तरह के खेलों को खेला करते थे। कभी डाल पर बैठ करके उस बरगद के पेड़ के जमुना के उस पार चले जाते इस पार चले जाते तरह तरह से खेल करते। और भी जब प्रलंबासुर को उन्होंने मारा तो गोपियों ने कहा कि मत छुओ। उस समय में कृष्ण ने कहा जैसे हमने तो एक दैत्य दानव को मारा है वो बछड़े का धारण किया था तो बछड़ा था नहीं तो नहीं तुमने बछड़े रूप में तो मारा
तो फिर करना अच्छी बात है। कैसे पवित्र होऊंगा? तो पृथ्वी के सारे तीर्थों के जल में स्नान करूं। तब उन्होंने अपनी बेड़ी से एक कुप बनाया, कुआं, और उसमें सब तीर्थों को आवाहन किया। गंगा सागर से लेकर किसी जितने भी पृथ्वी में तीर्थ है, सब तीर्थ आए और उसके पानी से पवित्र हुए। तो गोपियों ने छुआ, किंतु गोपियों ने कहा कि तुम बच्चे छोटे से बछड़े को मार करके बड़े वीर बन रहे हो। यदि तुम हमारी राधिका को मल्ल क्रीड़ा में उसे जीत सको, पराजित कर, तब मैं तुमको हम समझेंगे कि तू वीर है। तुमने कहा अच्छी बात है। तो राधिका जी भी मल्ल का वेश धारण किया और कृष्ण ने भी मल्ल वेश धारण किया। जब कृष्ण निकट में आए तो राधा जी ने ये अपने कटाक्ष के सर से ऐसे मारा कि कृष्ण अपने आप चित्त होकर के गिर पड़े। गोपियों ने ताली बजाया। इस तरह से एक ही नहीं, तरह तरह के यहाँ पर सब यहाँ पर भी जाएगी। यू कैन स्पीक इन वेरी ब्रीफ द ग्लोरी ऑफ भांडीर बट वेरी ब्रीफ
भांडीर
बट Can you?
We just spoke Bandirvat. Or Vamshivat, you mean?
No.
Bandirvat. I can teach. Okay.
Hare Krishna. Aaj parikrama samay Parmaraja Harpatar Mastasilen Bahadur Raja Chasma Bodhatra Niye Niye Chani. Jadi Kavi Ekan Bhula Raja Chasma Bharatiya Chasma Niye Chani. Kavi Parikrama Parmaraja
Harpatar
Harikatha. Somebody extend his glass. Spectacles. Who has taken, please return his glass and seek mercy. So, in the future, return his glass and take your own glass.
Thank you. But somebody can see.
So we just heard a very beautiful description by Savita Didi, and Srila Gurudev is asking me to tell in brief the pastimes that took place here at Bandirvat. So this is also a very important place. We know that our Srila Gurudev himself has erected this platform that surrounds the banyan tree there at Bandirvat. And he wants that this place will be recognized as a very prominent place in Braj Leela, pastimes of Radha and Krishna. So here, a number of pastimes have taken place, both for the Sakya Ras pastimes and Madhurya Ras pastimes. And at the time of Krishna's cow grazing pastimes, the cowherd boys, they used to come here and they used to assemble here also and have their bhojan lila. That means that they would bring their lunches from their houses and they would sit in circles surrounding Krishna here, and they would very happily be joking and laughing and looking at Krishna's very beautiful face and tasting the nectar of his beauty. And they would all experience, even though there were hundreds and thousands of cowherd boys, all of them would experience that, oh Krishna, he is seeing me personally, he is sitting next to me. So also this tree that was there at that time, Krishna used to climb up into this tree, and he used to also call his cows from a distance to come, and the cows would come and graze in that whole area, Bandirvan, that forested area. Also, once when Krishna was a very young boy, he was there with Nanda Maharaj in that area. And as he was walking, a very small little boy, Suddenly the clouds came into the sky, and it appeared that there would be a very big storm coming. So suddenly, just practically out of nowhere, little Radhika, as a young girl, suddenly appeared there. And she approached Nanda Maharaj and put out her hands that you should give Krishna to me. And then Nanda Maharaj instructed that she should bring him to safety. So at that time, as little children, they went hand in hand and walked into the forested area there at, near that Pandiravat, near that tree. And then when they came into that secluded area, suddenly they now manifested their teenage forms, their very beautiful Kishore forms. And also the Sakis appeared there, the Asta Sakis and all the other gopis appeared there. And now they wanted to perform the marriage of Radha and Krishna, just like little children sometimes play together. That, oh, let us play that we're going to get married. So actually Radha and Krishna, they cannot be married in Braj, because Braj is the place of Parakiya Ras. And Parakiya Ras means paramour love, that they have their husband, the gopis have their husband, but they're sneaking away from their husband to come here, to come to the lotus feet of Krishna and see him as their own paramour lover. So this, when this pastime was being performed, Lord Brahma personally came down on his swan carrier, and he performed the pastime of performing their Gandharva marriage. So it was like a pretend, and they exchanged garlands like this, and all the Braja gopis were very happy. And after this took place, then again they reverted back to their very young forms as little children, and then again came out of the forest and went back to the village of Braja. So therefore on the platform there you will see that Gurudev instructed that there should be a beautiful altar. And you see a picture of a deity of Lord Brahma there, and also of Radha and Krishna. Also here in this area was the pastime when the cows were grazing nearby, and Krishna and the cowherd boys were taking their lunches, and the cows were wandering more and more distant because they were looking and searching for new grasses to eat. So as they were wandering from more and more distance, then Krishna noticed that they were at a distance, and they began to search, cowherd boys began to search for the cows. But what happened was, there were some servants of Kamsa Maharaj in the nearby forest area, and they set fire to that forest just to try to kill the cowherd boys and Krishna. So when the cowherd boys and the cows saw the fire, they began to cry out, "Oh Krishna, Krishna, please come and save us." And then when they were calling out in this way, then Krishna appeared there, and he told all of them, "Now you should close your eyes." And he then took and swallowed all of the flames of the forest fire, and after that he told them to open their eyes, and when they opened their eyes, they were again situated in a very fresh, green, beautiful forested area. And Krishna told them to close their eyes. Why? Because previously they had told Mother Yashoda that, oh, Krishna has eaten dirt, and they got into trouble. So he didn't want them to tell Mother Yashoda that now he has eaten fire. And then also there's a pastime performed in this place of the Malla Krida, that means the wrestling pastime between Radha and Krishna. So the gopis and Srimati Radhika, they told to Krishna that you think that you are always very strong, but actually Ashimati Radhika, she is so much more powerful than you. She can overpower you at any time. And they challenged Krishna to a wrestling match. So then the gopis, they took Krishna, they took Srimati Radhika to a nearby kunja, and they began to prepare her for the wrestling match. But sometimes Srimati Radhika also dresses like a cowherd boy, very beautifully, with dhoti. And when the wrestlers are preparing to wrestle, then they pull up their dhotis, and like this. So Srimati Radhika was prepared by the gopis for this wrestling match, and when she was coming, Krishna was waiting for her to come. And when she began to come out of the kunja area into Krishna's view, she was covered with a veil, and when Krishna began to see her, already his knees began to tremble. He began to become overwhelmed. And as Srimati Radhika came closer and closer, then suddenly the gopis lifted her veil, and Srimati Radhika glanced with her crooked sidelong glance at Krishna. And it was just like an arrow of her sidelong glance, piercing Krishna's heart, overpowering him, and suddenly Krishna fell over and fainted. And all the gopis began to sing, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe. And also Bhikkhu, once when Krishna was in that area, he had just finished killing the Vatsasura demon, which was in the disguise of a calf. So when he was coming back to the gopis after killing the Vatsasura demon, they told him, no, no, don't touch us. You are now impure and contaminated. Krishna said, why? Because you have killed the cow. Krishna said, but this was not a cow. This was a demon in the form of a cow. They said, oh, nevertheless, you have killed the cow, you are impure. So then Krishna had to submit. Okay, what do I have to do? They said, okay, now you have to take bath to purify yourself. You will have to take bath in all the holy places of the entire earth planet. So then Krishna agreed, and he took his dhenu, his flute, and he pierced it into the ground, and immediately a well was created. And suddenly all the holy places, all the rivers of all the holy places throughout the earth came there into that well. Krishna took bath, and after that he enjoyed very beautiful pastimes in the Vrajagopis. So these are the very prominent pastimes that took place there at Vandirvan, Vandirvat. And this is one of the prominent places of Vraja. So now, in the future, all the pilgrims who come there from all different places, they will see this place, and it is, and on the sign that is posted there, it is told that this has been erected by Śrīla Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. And this is our Gurudev's heart. He wants to see that all the holy places in Braj are restored to their original beauty. Therefore, we have this Brajakut restoration project, which is fulfilling the inner heart's desire of our beloved Gurudev.
Only 2 miles in the west, Bhadravan is there. Bhandirban se 2 mil paschim ki or भद्रवन है जमुना के उस पार में वनों में बलदेव जी की महिमा अधिक है और पूरब की तरफ में वृंदावन
काम्यवन
तालवन कुमुदवन बहुलावन काम्यवन कोकिलवन इत्यादि में कृष्ण की महिमा अधिक है कृष्ण और राधा जी का तो ये उसी लिए भद्रवन है भद्रवन है बलभद्र से ये भद्र हुआ वहां पर गोचारी के लिए कृष्ण के साथ में जाते थे और वहां पर दाऊ भैया की प्रधानता थी सभी लोग इसलिए वहां पर दाऊ जी नाम का स्थान है माठपन है वहां से आने के समय में माठपन माठपन माने माठ माठ माने बर्तन वहां पर दही मंथन के पात्र मटके बनते थे और सब दीपावली के दिए बनते थे जो कुछ भी बर्तन ब्रजवासियों को जरूरत होती थी वहीं पर कुम्हार लोग बनाते थे और सारे ब्रज में वहीं से लोग ले जाते थे इसलिए वहां पर माठ बन हुआ और वहीं पर दाऊ जी का विग्रह है और गोचारी की भूमि है ये सब दर्शन करके नहीं तो कानों से सुन करके भी आप लोग उधर से आए हैं कानों के सुनने से भी ये फल प्राप्त होगा श्री बृहद भगवतामृतम। साधु संघ की महिमा, बंगला वाले कम है, वो लोग सब विश्राम कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो लोग विश्राम प्रिय है, हरि कथा न होने से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हिंदी में ही बोलता हूं। हम लोगों ने ओ एनीथिंग ट्रांसलेशन नथिंग। एकादशी स्कंद में बतलाया गया है, जैसे अग्नि रहे उसके समीप में जाओ तो उसमें ठंडक दूर हो जाती है, अंधकार नष्ट हो जाता है और सर्प इत्यादि जानवरों का भय भी दूर हो जाता है। साधु संघ ऐसा प्रभावशाली है कि साधु संघ का सेवन करने से जितना ही अंधकार है, अंधकार माने कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हो जाएगा। जैसे ठंड दूर हो जाती है वैसे हृदय का जो कुछ भय इत्यादि है वो सब दूर हो जाता है। संसार का भय, पुनः पुनः जन्म और मरण का ये भय दूर हो जाता है और कृष्ण का प्रेम लाभ होता है साधु संघ से। इसलिए साधु संघ का महात्म बहुत अधिक है। ग्यारहवें स्कंद में बतलाया गया कृष्णा स्वयं का है, हे यदुनंदन उद्धव, तुम मेरे सेवक सुरोहित सखा सभी कुछ हो, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, अत्यंत गोपनीय होने पर फिर तुम्हें एक रहस्यपूर्ण बतलाता हूं तत्व, और वह यह है उद्धव, सत्संग से जिस प्रकार से मैं वशीभूत होता हूं और तप से सांख्य से योग से स्वाध्याय से तप से इष्ट पूर्ति दक्षिणा व्रत यज्ञ छंद तीर्थ यात्रा नियम जम से नहीं हम वशीभूत, सत्संग से मैं एकदम वशीभूत हो जाता हूं, योग माने आसन प्राणायाम से नहीं होगा, समदम विवेक धर्म त्याग से व्रत तपस्या से कुएं बगीचे खुदवाने से अस्पताल बनवाने से भगवान वशीभूत नहीं होंगे। आजकल लोग इसी तरह में पाठशाला बनाओ अस्पताल बनाओ और लोगों का उपकार करो। हमारे यहां पहले महिलाएं या पुरुष ग्राम में रहने वाले पढ़े लिखे नहीं होते थे, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, किंतु बड़ी सत्यवादी होती थी, तलाक तलाक नहीं देती थी, उनमें प्रेम और स्नेह था पति के लिए पुत्र के लिए। आजकल पढ़ लिखने से क्या होगा, अस्पताल इत्यादि से भी नहीं होगा, उसके भी बहुत खराब पहलू है, इसलिए इन सब से नहीं होगा। आजकल सब जगह गरीबों को भोजन बांटो, ठीक है बांटना तो ठीक है, प्रसाद उनको दो, उनको भगवान के चरणों में जैसे भक्ति हो इस प्रकार से करो, और गवर्नमेंट भी उन्हीं की मान्यता देती है जो अस्पताल बनवाते हैं स्कूल बनवाते हैं, भक्ति के तरफ में नहीं है। और भी कहते हैं पंचम स्कंद में महत्पुरुषों का तो आपने बतलाया, सत्संग की महिमा आपने बतलाई, किंतु महत्पुरुष या साधु कौन है, उसका लक्षण क्या है बतलाओ, कैसे समझेगा कि ये सच्चा साधु है। आजकल साधुओं के बीच में बहुत असाधु भरे पड़े हैं संसार में, जो लोगों को धोखा दे करके पैसा बटोरते हैं, बस उसके हृदय के कान के मैल को दूर नहीं कर पाते हैं। जो समदर्शी हो, प्रशांत, सुख और दुख में दोनों में शांत प्रशांत हो, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्प्रिय, वितराग भय क्रोध मुनि भीर उच्यते, दुख आने पर भी प्रसन्न चित्त है, ये हमारे कर्मों का फल है, उसको हंसते हुए भोग कर सुख की प्रिया नहीं करता, बिना बुलाए ही सुख यदि होगा कर्मों का फल तो आ जाएगा। संसार में आसक्त नहीं होते, वैराग्य संसार से, भगवान के चरण में उनकी भक्ति होती, ये सब महत्पुरुषों का लक्षण है। इसलिए यहां पर भी बतला रहे हैं, क्रोध जिसमें नहीं हो, बात बात में क्रोध जो करते हैं वो महत नहीं कहे जा सकते। सुहित, सबका कल्याण करने वाले होते हैं, जगत के सभी लोगों को भगवान की भक्ति हो, उनका कल्याण करने वाला होते हैं। सदाचारी, वैष्णव सदाचार ग्रहण करते हैं और मेरे प्रति प्रीति, मुझे प्यार करना ही, प्रेम करना ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं, भगवान के चरणों में प्रीति रखते हैं, विषयों में आसक्ति है, धन पुत्र पत्नी मित्र इत्यादि से प्रीति नहीं, सब दर्शी हैं, किसी प्रकार से शरीर निर्वाह करने के लिए उपयोगी अर्थ को बस संग्रह करते हैं, अधिक नहीं, अधिक समय भगवान का भजन करने में समय देते हैं, यही महत्पुरुषों के लक्षण है। इन्हीं का संग करो, देख लो, पहले तो तुम बनो निरपेक्ष भगवान का भजन करने वाला, मुझे भगवत भजन का अतिरिक्त नहीं चाहिए, तो भगवान कृपा करके तुमको ऐसे ही संग देंगे। और ऊपर से ये देख लेना कृष्ण तत्वज्ञ है कि नहीं, भगवान की कुछ अनुभूति है कि नहीं, स्वयं भजन करते हैं कि नहीं, संसार से विरक्त है कि नहीं, देख लो, और देख करके तब फिर गुरु उनको बनाओ और फिर उनका संग करो, तब तक कुछ फल होगा, अन्यथा फल नहीं होगा। और भी कृष्ण ने उद्धव को कहा है, जो निष्किंचन हो, निष्किंचन निष्किंचन अकिंचन एक ही शरण की तारे प्रवेश आत्मसमर्पण से कार्य कृष्ण तारे कार्य आत्मसम आत्मसम निष्किंचन कृष्ण ही उनके एकमात्र धन है और कोई धन उनको धन नहीं मानते। मुझ में परम अनुरक्त, कृष्ण में परम अनुरक्त है, जिनकी सारी कामनाएं शांत हो गए, जगत की कोई कामना वासना जिनके हृदय में नहीं है, आप लोग भी डोंट हैव एनी वर्ल्डली डिजायर, नेवर एंड नेवर, कोई भी जाति कामना मत करो, बस कृष्ण भक्ति हमारी बढ़े, बस यही कामना। ऐसे साधुओं का संग हो, बस यही प्राप्त। यदि लाख नष्ट हो रहा है कोई चीज और यदि साधु संग कहीं मिल गया, हरी कथा हो रही है, सब कुछ छोड़ो, परिक्रमा मत करो गोवर्धन की और वृंदावन की, हरी कथा सुनो। एनी साधु संग इज गोइंग ऑन, डोंट गो टू ब्रजमंडल परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा और एनी परिक्रमा, फर्स्ट हियर एंड देन आफ्टर दैट इन लेजर टाइम यू कैन गो। फर्स्ट प्रेफरेंस टू साधु संग, निराभिमानी, ही हैज नो एनी काइंड, वो कोई अहंकार नहीं है उसको, सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव, उनका कल्याण कैसे हो ये सब समय चिंता है, संसार वासनाएं नहीं है उनमें, कोई भी कामना संसार की नहीं है, ऐसे मेरे चित्त में मेरे प्रति प्रेम करने वाले वही साधु है, उनका संग करो। एकादश स्कंद में फिर बतलाते हैं, जोगेश्वर श्री हरि समस्त भक्तों के लक्षण सार रूप में बतलाए, विवश होकर के भी जिनका नाम उच्चारण करने से नाम उच्चारण करने के समस्त पाप नाश हो जाते हैं, विवश होकर के भी कृष्ण का नाम करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर सत्य हुए भी राम राम कृष्ण कृष्ण कह दिया, राधे राधे कह दिया, किसी भी प्रकार से मोक्ष से निकल गया, भगवान उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, अपने चरण कमल के प्रेम रूपी पास से बात बंद कर, जो महापुरुषों के जिन साधुओं के प्रेम की रस्सी से बंध करके उनके हृदय में बंद है कारागार में, वो संत संत हैं, भगवान उनके हृदय को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाते, क्षण भर के लिए नहीं, वही भक्त उत्तम भागवत हैं, वही साधु हैं उत्तम, उनका संग करना चाहिए। अंत में दशम स्कंद में देवस्तुति, देवकी के गर्भ में भगवान आए, ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, कोई यदि कहे कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने की क्या अवस्था है, ज्ञान के द्वारा ही बहुत सागर को पार कर सकते हैं, नो नीड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण लोटस फीट, ओनली बाय ज्ञान वी कैन क्रॉस द एंडलेस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, नो नीड। उसके उत्तर में कहते हैं, हे कमल लोचन, जो लोग अपने को मुक्त अभिमान करते हैं, मुकेश लोकता जे अरविंद दास विमुक्त मारिना अभिशुद्ध बुद्धया आरोग्य कृष्णेन परम पदम पतंति पतो अदा अनागत जुष्पदा। जो लोग भगवान के चरणों का अनादर करते हैं और अपने को मुक्त मानते हैं, उन वे लोग अत्यंत ऊपर उठ करके भी फिर गिर जाते हैं, भव सागर में पड़ जाते हैं, यथार्थ में मुक्त नहीं है, मुक्त होने का अभिमान करते हैं, इसलिए भगवान के चरणों का अनादर करते हैं,
भगवान तो निराकार है, इनका रूप कहाँ है? कृष्ण को भगवान नहीं मानते, राम को भगवान नहीं मानते, इसलिए ये मुक्त होकर के बहुत ऊंचे ऊपर उठ जाए तो भी नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से साधु संघ की बहुत महिमा का वर्णन सनातन गोस्वामी ने कहा है। हमने संक्षेप में कुछ का वर्णन किया है।
Just one thing quickly. Gurudev said west of Mandiravan there is Balaravan. Where is the prominence of Balaram? But on the other side, in the forest like Kariravan, Kokilavan, there is the prominence of Sivara and Vishnu. Devi Balaravan is the temple of Dalji, and there is Matran, where all Brijvasis used to go there to buy clay pots. So even though we did not stop there, the same result is achieved by going to buy pots. So continuing Sri Sanatana Goswami is glorification of Sadhu Sangha. Just by staying near a fire, automatically cold is dispelled, darkness is dissipated, and fear of ghosts and other things is destroyed. So Sadhu Sangha is like that. In the association of a sadhu, andhika or darkness, which means a lack of Krishna tattva, is destroyed. Tando, cold, which here means different types of fears that we have in the heart, for example, fear of repeated birth and death, is destroyed, and ultimately one achieves prema at the feet of Sri Krishna. In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, Sri Krishna himself says, "O Uddhava, you are my sevak, my servant, my friend, and also ready dear to me." So even though this tattva is most confidential and should not be revealed, I will reveal it to you. I am completely bound by Sadhu Sangha. I am not as completely bound by the performance of sacrificial offerings, yajna, visiting the different holy places, Tirtha Brahm, following the different limbs of Ashtanga Yoga like Yam, Niyam, by the performance of meditation, by possessing different qualities like tolerance or renunciation. I am not captured by the performance of austerities or vows or the giving of charity, but I am completely captured and controlled by one who performs Sadhu Sangha Uddhava. Gurudev said, really this is true. Even though we see previously in the villages, the ladies were not educated, but how much affection they had towards everyone. But now as a result of being educated, they have become spoiled and affection in the family has been lost. Therefore, we are not against such activities like feeding the poor or by educating people, but we should do it in such a way that brings them towards Bhagavan, for example, by feeding them Mahaprasad. The present day atheistic governments are not understanding this and simply building schools and hospitals. But the people are still opposed to the service of Sri Krishna. Therefore, in the 5th canto, the question is asked, we are hearing about Sadhu Sangha, but who is a real sadhu? These days, so many guys wandering around in red cloth, smoking bidis and collecting money, but they cannot purify the heart of anyone by their instructions. Therefore, what is the symptom of an actual sadhu? A sadhu is that person who is equal in heart, who is equiposed in happiness and distress. When some distress comes uninvited, they laugh. This is a result of my previous activities. And when some benefit comes, they are not disturbed, not overjoyed. The sadhu will have no anger. They'll act in a way which is beneficial for all. That means they will try to inspire bhakti in the hearts of all they meet. They are completely endowed with satcha, pure behavior. And they think that priti to Bhagavan, love towards the feet of Sri Krishna, is the ultimate goal of life. Such a sadhu will be equipped with the symptoms of never being attached to children, house, or wealth. And they'll simply have enough material possessions to maintain their body, not more. To have more than necessary is simply a loss of time. That sadhu will be nirpex, equal to equipoise. And they will desire nothing except devotional service. Such a sadhu will also have tatvigyana, knowledge of spiritual truths. They should have direct realization of Krishna himself. They should themselves be performing bhajan, not just telling others to do it. And they should be detached. Then if one can find, one should examine a sadhu, and then accept him as guru and perform sadhu sangha, one can get the benefit. There is sadhu should be this kitchen and a kitchen, which have the same as essence. Means they think that Krishna is their only wealth, and except for Krishna, nothing is important to them. Diksikari bhakta kari atmasam vatam, sekari bhakta kari atmasam. At the time of initiation, the devotee completely samarpan, completely surrenders. At that time, Krishna makes him as good as himself. Therefore, a devotee will be like that, completely attached to Krishna, and will have not even a sense of any material desire. They only desire Krishna Bhakti. Therefore, we get the chance to hear Harikatha from such a sadhu. We should not perform parikram, like Govardhan parikram, Vrindavan parikram. We should give up everything, and in our free time after Harikatha, we may do any other of our own spiritual practices. Such a sadhu will have no ahamka, false ego, and they will feel parental affection towards all. Therefore Krishna said, Uddhav, you should take the association of such a sadhu. Therefore one who chants in a hopeless condition the name of Yogeshwar Srihari, then all their sins are completely destroyed. And by sadhu sadhu they will bind Krishna in the heart by the rope of praying. The heart of such a sadhu becomes like a prison. Krishna cannot move from there. Such a sadhu was called Uttam Bhagavat. Therefore, in the 10th canto, the demigods prayed to the woman Devaki. They said, Oh Bhagavan, some people give the argument, hey, what need to serve Bhagavan? By gyan, by speculative knowledge, we can easily cross the ocean of birth and death. But the demigods in their prayers to the womb of Devaki said, Those who consider themselves liberated, but do not accept the feet of Sri Krishna, then they are not liberated at all. Because of not respecting the feet of Sri Krishna, again, patanti, they fall down. Such persons, they do not accept the eternal form of Krishna or Ram. Neither do they think that Krishna or Rama Bhagavan. Instead, they think that the Lord is formless. But they are not liberated at all.
Thank you.
Kalke, Radha Shyam Sundar Mandire, Darshan. Tarpare Nidhuban, Radha Raman, and Radha Gopinath. আর পাশেই মধু পণ্ডিত যদি রাধা গোপীনাথকে প্রকট করেছিলেন তার সমাধি শেষে গোকুলানন্দ ওইখানে গোকুলানন্দের দর্শন ছিল লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমাধি পীঠ দর্শন আর ওইখানে দুপহর বেলা প্রসাদ হবে এখানে প্রসাদ রন্ধন হবে না সব লোকে ওখানেই প্রসাদ পেতে হবে রাধা গোকুলানন্দের সুন্দর স্বাদিষ্ট প্রসাদ ওখানে পাওয়া যাবে টুমারো উই উইল গো টু শ্যাম সুন্দর দেন নিধুবন দেন রাধা রমন গোপীনাথ এন্ড ইন এন্ড উই উইল গো টু গোকুলানন্দ And there, Sri Loknath Goswami, Narottam Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Samadhi Peet. And there, very delicious, Mahaprasad will be given in midday. Very delicious. He has no cooking. All have to go there and take prasad. Gau Pramana. Bangla to